प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 28 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का भी विषय हमारे कल के कंटिन्यूएशन में है। कल हम लोग बात कर रहे थे डर के ऊपर, यानी कि डर का सामना हम कैसे कर सकते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि कल शाम को मुझे इस विषय से संबंधित काफी मेल मिले जिसमें आप सब ने इस विषय को अप्रिसिएट किया है। और ये बहुत स्वाभाविक भी है क्योंकि फ्रेंड जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये डर एक ऐसा तत्व है जो हम सब के अंदर कहीं न कहीं रहता है। यहां तक कि आप बड़े बड़े राजा महाराजाओं से जिन्हें आप सोचते हैं कि ये क्या शान से रहते हैं, इन्हें तो किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है, जाकर के पूछे तो उनमें भी किसी न किसी तत्व का भय रहता है। मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में बताऊंगा जो इतने बड़े शासक थे, महान सम्राट थे, और मालूम है कि वो रात में कहां सोते थे। किसी को पता नहीं होता था कि वो कहां सोते थे, मतलब उनके सोने के कई बेडरूम थे, कई कमरे थे, और उन कमरों में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुतले रखे रहते थे। पुतले बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही वो दिखते थे पुतले, और किसी को नहीं मालूम होता था कि वो किस में जाकर सोएंगे। राइट, एक कमरे में जाकर के सो जाते थे, बाकी में उनके पुतले सोते रहते थे। सोच करके देखे कि ये जो व्यवस्था की गई थी, सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई थी, वो क्यों की गई थी। इसीलिए ना कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई षड्यंत्रकारी आए और रात में जब चंद्रगुप्त मौर्य सो रहे हैं तो कोई उनकी हत्या कर जाए। तो ये जब चंद्रगुप्त मौर्य सो रहे होंगे तो सोच के देखिए कि क्या उनको अपने जीवन का भय नहीं रहता होगा। आशंका तो रहती होगी ना कि यार मेरे पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, पता नहीं मैं सुबह जी उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा। तो मित्रों इस इशू पर हम लोग बात कर रहे थे और आइए अब हम इसी विषय पर और आगे बात करते हैं। एक बात मैं यहां और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम एक तरफा सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे क्रोध तो ये बुरा ही होता है, डर तो ये बुरा ही होता है। मित्रों अगर आप तार्किक रूप से सोचेंगे और यहां तक कि उसे आप व्यावहारिकता में भी देखें तो कोई भी चीज एकदम बुरी नहीं होती है, कोई भी चीज एकदम अच्छी भी नहीं होती है। दरअसल सारी अच्छाई और बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि समय क्या है, स्थान क्या है, उद्देश्य क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अदरवाइज तो चाकू से आप जानते हैं कि सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी के गर्दन की नस भी काटी जा सकती है। किसी को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो किसी को मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दरअसल जब हम जीवन के संदर्भ में किसी भी चीज का, चाहे वो छोटी सी चीज हो या बड़ी सी चीज हो, एनालाइज करते हैं तो ये डिपेंड इस बात पर करता है कि हमारा दृष्टिकोण कितना व्यापक है, हम उसमें कितने सारे ढेर सारी स्थितियों को लेकर चल सकते हैं। जैसे डर की बात हम कर रहे हैं तो अब आप देखें कि सामान्य तौर पर यही कहते हैं कि भुला दे डर, जला दे डर, कुछ नया कर, ये कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, वास्तव में डर एक संकुचन पैदा करने वाला भयानक किस्म का तत्व तो है। और आप देखें कि जैसे ही हम भयभीत होते हैं हम सिकुड़ जाते हैं। आप देखिए कि हम सिमटने लगते हैं ना, भय के मारे कांपने लगते हैं, सिमट जाएंगे, किसी से जाकर के लिपट जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे फैलाव को उसने रोक दिया है, बायोलॉजिकली भी और मेंटली भी। अब हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं जब हम भयभीत होते हैं। तो ये एक ऐसा तत्व है जो हमें संकुचन में ले आता है, हमें सिकोड़ देता है, हमें समेट देता है, जबकि हम बने हैं फैलाव के लिए। हमारे पास ठीक है पंख नहीं है लेकिन हम आसमान में उड़ सकते हैं, कल्पना के आधार पर उड़ सकते हैं, अपनी बौद्धिकता के आधार पर उड़ सकते हैं, सपनों के आधार पर उड़ सकते हैं। तो व्यक्ति तो फैलाव के लिए, विस्तार के लिए, विकास के लिए बना है। राइट, लेकिन क्या सच में भय केवल हमें संकुचित करके हमारे विकास को रोक देता है। दोस्तों ये जो भय है कहीं ना कहीं हमें विनाश से बचाता भी है, जिसे मैंने कहा कि इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, इसका एक ऐसा क्षेत्र भी है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। क्रोध के बारे में भी ऐसे ही है। भगवान राम गुस्सा होते थे, क्रोध होते थे ना, क्रोधित होते थे। लक्ष्मण जितने गुस्सा नहीं होते थे, वो जानते थे कब गुस्सा होना चाहिए कब गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो उस क्रोध को हमारे एक हिंदी के बहुत ही महान समीक्षक हुए हैं, आलोचक हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राम के इस क्रोध को उन्होंने सात्विक क्रोध कहा। सात्विक सात्विक क्रोध, यानी कि एक ऐसा क्रोध जिसमें हित की भावना जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसी तरह से मुझे लगता है कि एक सात्विक डर भी हो सकता है, होता ही है। इसलिए इस रूप में कि मान लीजिए कि वास्तव में एक ऐसी चीज है जिससे मुझे डरना चाहिए, लेकिन मैं नहीं डर रहा हूं। अपनी आप यूं कह लीजिए कि साहस का मैं अपने परिचय देना चाह रहा हूं कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन वो चीज ऐसी है जो डरना ही चाहिए। मान लीजिए कि पानी बहुत बहुत ज्यादा भाव में है और बिल्कुल बाढ़ आई हुई है और मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो तैरना जानता हूं और मैं छलांग लगा देता हूं बिना मतलब के, किसी को बचाने के लिए नहीं, बिना मतलब के दिखाने के लिए कि अरे मैं किसी से नहीं डरता। अब मैंने अपनी जिंदगी जोखिम में डाल ली ना। आप देखिए कि अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिलता है, यहां जो मैं भोपाल की ही बात बता रहा हूं, कि कुछ लड़के पिकनिक मनाने गए, यहां डैम काफी हैं, डैम में पिकनिक मनाने गए और पता लगा कि वहीं बच्चे डूब गए। और दुखद बात यह है कि ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं, यानी कि ये सुन पढ़ लेने के बाद भी कि बच्चे वहां जब पिकनिक मनाने जाते हैं तो गहराई में चले जाते हैं और वहीं डूब जाते हैं, इसके बावजूद लोग ऐसा करते हैं। सेल्फी का देख लीजिए मजेदार बात, कैसी खतरनाक खतरनाक जगहों पर जाकर के लोग सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, पैर फिसल जाता है, बात खत्म हो जाती है। मुझे ये लगता है, देखिए मैं नहीं जानता कि मैं कितना सही हूं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि आप ये बताइए कि आप एक चट्टान के ऊपर एकदम किनारे खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, आपने सेल्फी ले ली, इससे क्या हो जाएगा, क्या बड़ी चीज हो जाएगी, आप बताइए, कुछ हासिल तो नहीं होगा ना, कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई इनाम नहीं मिलेगा, क्या होगा। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि हम ये खतरा मोल ले रहे हैं, किस काम के लिए ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं, तो वहां तो बल्कि डरना ज्यादा अच्छा है। अभी आप ब्लू वेल गेम कोई देखिए ना, कितनी दुखद स्थिति हो रखी है, बिना मतलब के लोग साहस दिखा रहे हैं। तो मित्रों, जब मैं डर को भुला दें, डर को जला दें, डर को भगा दें, डर को हटा दें जैसे नारे की बात कर रहा हूं, तो याद रखिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने को फालतू के आप जोखिम में डालिए जहां कुछ मिलना नहीं है, ये बात आप लोग सब ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अब मैं डर के एक दूसरे तत्व पर आता हूं। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं एक बात आप में से हर कोई जानता है, मैं दोहराना नहीं चाहता, और सच पूछे तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इससे पहले के लाइफ मैनेजमेंट में कभी न कभी मैंने इस बात की खूब विस्तार से चर्चा भी की होगी, जरूर की होगी, और वो ये है कि डर का मुकाबला जो करने का जो सबसे सही तरीका है, सबसे प्रभावशाली तरीका है, वह यह कि आप उसका सामना करें, यानी कि प्रैक्टिकली उसके सामने खड़े हो जाएं, अड़ जाएं कि मैं तो इसे करूंगा। और जब आप करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जितने भी निहित भय के तत्व होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो बेकार होते हैं, जो फैलाए जाते हैं, वो साफ साफ दिखाई देने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और भय खत्म हो जाता है। देखिए, भय तो एक ऐसी चीज है ना कि जिस चीज से मुझे भय लगता है आपको उससे बिल्कुल भय नहीं लगता, बल्कि मैं तो भयभीत होता हूं और आप मेरे भयभीत होने को देखकर हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यार इसमें भी कोई भयभीत होने की बात है। कुछ को अंधेरे से डर लगता है, कुछ को अंधेरा अगर हो गया है तो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने में डर लगता है, उनको लगता है कि अरे बाप रे, कहीं ऐसा ना हो कि यहां कोई भूत प्रेत रह रहा हो। कुछ लोग अगर सड़क के किनारे, मान लीजिए कि कोई कब्रिस्तान है या जहां शव दाह किया जाता है वो है, तो वहां से गुजरने में डर लगता है, उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कब्रिस्तान से या इस शवदाह गृह से कोई भूत प्रेत ही निकल करके सामने सड़क पर खड़ा हो जाए बिल्कुल सफेद कपड़ों में और लिफ्ट मांगने लगे, उससे भी डरते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां सुबह एक बच्चा आता है, 16-17 साल का होगा, मजेदार बात है कि वो उसका जो घर है वो शमशान घाट के घेरे के अंदर है, वो वहां रहता है, मस्ती से रहता है, उनका पूरा परिवार रहता है, मस्ती से वो रह रहे हैं, उनको डर ही नहीं लगता, शाम को लौटता है, रात में लौटता है, मस्त है। और मैं पूछता हूं कि भैया कभी भूत ऊत दिखा, तो बोले कि सर मुझे तो कभी नहीं दिखा। मैं कहा कोई रोने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी क्या, बोले नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई, कभी न तो दिखाई दिया न कभी आवाज सुनाई दी। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो शाम होने के बाद उस रास्ते को सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हैं कि यार वहां तो जो है ना शमशान गृह है, शवदाह गृह है, अब आप देखिए कि देख रहे ना कि आप अलग अलग चीजों के प्रति भय है। तो अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिकली करने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको उसकी सच्चाई पता लगती है। देखिए जो भय होते हैं 90 इस तरह के जो अफवाह या अंधविश्वास से जुड़े हुए भय होते हैं 99.9% या 100% भी आप कह सकते हैं कि केवल मान्यताओं पर आधारित हैं, अफवाहों पर आधारित होते हैं जिनमें भयभीत होने का कोई कारण नहीं होता। हाँ, जो प्राकृतिक चीजों से संबंधित जो भय हैं, जैसे मैंने भी सेल्फी की बात कही या बाढ़ की बात कही, तूफान की बात कही, तो वहां निश्चित रूप से हमें तार्किकता का इस्तेमाल करना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं। अदरवाइज देखिए सीधी सी बात है कि आप मुकाबला कीजिए, मुकाबला करेंगे भय से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मित्रों, मुकाबला करने से पहले हमें तार्किकता का इस्तेमाल करना चाहिए। तार्किकता का इस्तेमाल मैं इस रूप में कह रहा हूं कि ठीक है, जैसे कि अभी बकायदे एक एड आ रहा है, आप स्टार भारत में देखेंगे, हमारे धोनी जी का, जिनकी चर्चा मैंने कल भी की थी, कि मैंने जब नौकरी छोड़ने की बात सोची तो वो बहुत मुश्किल काम था, लोग मना कर रहे थे, लेकिन मैंने छोड़ी तो आज इसीलिए धोनी धोनी बने, राइट। अब आप सोच करके देखिए कि यह सिर्फ इमोशन था या इसके पीछे लॉजिक भी था। इसके पीछे मित्रों बकायदे लॉजिक था और बहुत बहुत अच्छा लॉजिक था, भले हम उस लॉजिक को पकड़ ना पाए। देखिए कुछ लॉजिक तो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि वो अविवाहित थे धोनी, उस समय वो रिस्क ले सकते थे। दूसरा यह कि इससे पहले जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उसमें उनको दिखाई दे गया था कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, उसमें उन्होंने अपने को सिद्ध कर दिया था, यानी कि उन्हें वो गुण भी दिखाई दे रहा था, राइट। उनका उनकी जो फैमिली थी वो अपने आप में सेटल्ड थी, परिवार की कोई उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। तो अगर आप देखें तो जोखिम केवल इतना ही था कि वो रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बेरोजगार हो जाएंगे, यही थोड़ा सा जोखिम था। तो इतना बड़ा जोखिम नहीं था कि जीवन के अस्तित्व को चुनौती मिल जाए या जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो मित्रों यहां मैं तार्किकता की बात करता हूं। अदरवाइज होता क्या है कि हम बेवजह केवल नहीं नहीं मैं कर लूंगा इस जोश में आकर के कोई भी अतार्किक कदम उठा लेते हैं जो इनफैक्ट हम कर नहीं पाएंगे। हमारे अंदर ऐसी कोई झलकी नहीं, झलक हमें नहीं मिली है कि मैं इसको कर लूंगा, बस लोगों ने जोश भर दिया और हम भर गए और हमने उसको करने की ठान लिया और कोई भी हमने जोखिम भरा कदम उठा लिया। मित्रों हमेशा याद रखिए कि इच्छा होना एक बात है, जिसको हम पैशन कहते हैं, पैशन होना एक बात है, लेकिन योग्यता होना दूसरी बात है ना। ये बहुत, इन दोनों के अंतर को बहुत समझ करके और फिर इसका इस्तेमाल डर के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इच्छाएं तो मेरी बहुत हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, लेकिन क्या उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो है, जो साधन होने चाहिए वो हैं? अगर ये हैं तो फिर जोखिम लेने में भयभीत नहीं होना चाहिए। इसे ही मैं कह रहा हूं मित्रों तार्किकता। तो हमेशा डर का सामना करने से पहले अपने तार्किकता का जरूर इस्तेमाल करें। तो मित्रों ये मेरा संदेश है या ये बात मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा था। तो अब अपनी बात को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा क्योंकि वक्त भी हो चला है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप सब भी अपने अपने विचार मुझे भेजें और यदि उसमें से कुछ और पॉइंट्स मुझे मिले तो हम उस पर कल फिर बात करेंगे। अदरवाइज किसी और नए विषय पर आप सब नए विषय भी सुझाएं। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।